ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 11 अगस्त 2019 के लिए है। विषय आत्मा, स्वर्ण पथ, अयूब। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई सांस से उन्हें समझने की शक्ति देता है। उत्तरदायी अध्ययन ग्रंथियों। परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं छेड़ी हैं, वो ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की घोर बातें भी जानता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो हमें परमेश्वर ने दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जानता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। पाठ उपदेश बाइबल में से यशाया। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपनी आत्मा रखी है, वो अन्य जातियों के लिए न्याय प्रगत करेगा। ईश्वर जो आकाश का सरजाने और तानने वाला है, जो उपज साहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वो यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धाम से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा, कि तू अंधों की आँखें खोले, बंधुओं को बंदीगृह से निकाले और जो अंधेरे में बैठे हैं उनको काल कोठड़ी से निकाले। प्रेरितों के काम। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बिठा देते थे, कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देख कर कहा, हमारी ओर देख। सो वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया, और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बाल आ गया, और वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। प्रेरितों के काम। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और परनीय और शास्त्री सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए, और उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ और किसके नाम से किया है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और प्राणियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछपाछ की जाती है कि वो क्यों कर अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इसराइली लोग ये जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने सूली पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजा मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हिया देखा और ये जाना कि ये अनापाद और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया और फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था साथ खड़े देखकर वो विरोध में कुछ ना कह सके। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखलाना। वो छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ महायाजकों और पुरानियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। ये सुनकर उन्होंने चित होकर ऊंचे शब्द में परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समंदर और जो कुछ उनमें है बनाया। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, और ठीक करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। और वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। रोमियो। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर बंद की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकती है। और जो शारीरिक दिशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम्हें बसती है तो तुम शारीरिक दिशा में नहीं परंतु आत्मिक दिशा में हो। यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। क्रंतियों। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। गलतियों। मसीह ने स्वतंत्र के लिए हमें स्वतंत्र किया, सो इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर न जुतो। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। आत्मा दिव्य पदार्थ परमेश्वर, जो केवल परिपूर्ण, चिरास्थाया, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, अनंत है। क्रिश्चियन साइंस में एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में सर्वोच्च व्यक्ति का नाम है। इसका मतलब मात्रा और गुणवत्ता है, और ये विशेष रूप से भगवान पर लगाव होता है। आत्मा सभी चीजों का जीवन पदार्थ और निरंतरता है। परीरत याकूब ने कहा, तू अपना विश्वास मुझे काम के बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास तुझे अपने कामों के द्वारा दिखाऊंगा। ये समझ कि जीवन ईश्वर है, आत्मा जीवन की मृत्युहीन वास्तविकता, हमारी सर्वशक्तिमानता और अमरता में हमारे विश्वास को मजबूत करके हमारे दिनों को लंबा कर देती है। मसीह आत्मा था जिससे यीशु ने अपने बयानों में निहित किया था, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मैं और पिता एक हैं। ये मसीह या यीशु की दिव्यता उसकी दिव्य प्रकृति थी जो उसे अनुप्रांति करती थी। ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम ने पाप, बीमारी और मृत्यु पर यीशु को अधिकार दिया। उनका मिशन आकाशीय विज्ञान को प्रकट करना था, ये साबित करने के लिए कि ईश्वर क्या है, वो मनुष्य के लिए क्या करता है। बीमारों और पापियों को ठीक करने में यीशु ने इस तथ्य को विस्तार से बताया कि उपचार के प्रभाव ने ईश्वरी सिद्धांत और मसीह आत्मा की समझ का पालन किया जो शारीरिक यीशु को नियंत्रित करता था। इस सिद्धांत के लिए कोई राजा वंश, कोई संघीय अधिकार नहीं है, इसका एकमात्र ताज संप्रभुता है, इसका एकमात्र पुजारी आध्यात्मिक व्यक्ति है। बाइबल घोषणा करती है कि सभी विश्वासी राजे और पिता के पुजारी थे। शास्त्र हमें सूचित करते हैं कि भगवान से सब कुछ हो सकता है, आत्मा के लिए सभी अच्छाई संभव है, लेकिन हमारे प्रचलित सिद्धांत व्यवहारिक रूप से इससे इनकार करते हैं और केवल सामग्री के माध्यम से उपचार को संभव बनाते हैं। हमारे काल में मसीहत फिर से ईश्वरी सिद्धांत की शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, जैसा कि 1900 साल पहले हुआ था। बीमारों के इलाज और मृत्यु पर विजय पाने से यीशु ने कभी नहीं सिखाया कि दवाइयाँ, भोजन, हवा और व्यायाम एक आदमी को स्वस्थ बना सकते हैं या वो मानव जीवन को नष्ट कर सकते हैं। ना ही उसने अपने अभ्यास से इन त्रुटियों का वर्णन किया। उन्होंने मन के प्रति सद्भाव का उल्लेख किया, सामग्री के लिए नहीं, और कभी भी ईश्वर की वाकी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की, जिसने पाप, बीमारी और मृत्यु की ईश्वर की निंदा को सील कर दिया। भावतिक इंद्रियां ईश्वर को कोई प्रणाम नहीं प्राप्त कर सकती, वो ना तो आत्मा को आँख से देख सकते हैं और ना ही उसे कान से सुन सकते हैं, और ना ही वो आत्मा को महसूस कर सकते, स्वाद ले सकते, ना ही उसे सूंघ सकते हैं। यहाँ तक कि अधिक सूक्ष्म और गलत भावतिक तत्व इन इंद्रियों के संज्ञान से आगे है और केवल उन प्रभावों के द्वारा जाना जाता है जो इमा तौर पर उनके लिए जिम्मेदार हैं। क्रिश्चियन साइंस के अनुसार मनुष्य की एकमात्र वास्तविक भावना आध्यात्मिक है, दिव्य मन से निकलती है। विचार ईश्वर से मनुष्य की ओर जाता है, लेकिन ना तो संवेदना और ना ही रिपोर्ट भावतिक शरीर से मन तक जाती है। अंतर मन हमेशा ईश्वर से लेकर उसके विचार मनुष्य तक होता है। आत्मा उस समझ को प्रदान करती है जो चेतना को बढ़ाती है और सभी कुछ सत्य की ओर ले जाती है। आध्यात्मिक भावना आध्यात्मिक अच्छाई की समझ है। अच्छाई वास्तविक और सत्य के बीच सीमांकन की रेखा है। आध्यात्मिक समझ मन, जीवन, सत्य और प्रेम को प्रकट करती है और क्रिश्चियन साइंस में ब्रह्मांड का आध्यात्मिक प्रमाण देते हुए दिव्य भावना को प्रदर्शित करता है। ये समझ भावधिक नहीं है, विद्वानों की प्राप्ति का परिणाम नहीं है, ये प्रकाश में लाई गई सभी चीजों की वास्तविकता है। बाइबल आत्मा की नवीकरण के द्वारा शरीर के परिवर्तन को सिखाती है। हमें हुरैब की ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए जहां परमेश्वर प्रगत होता है और सभी आध्यात्मिक भवन की आधारशिला पवित्रता है। आत्मा का बपतिस्मा, मांस की सभी अशुद्धियों के शरीर को धोना, ये दर्शाता है कि शुद्ध हृदय ईश्वर को देखता है और आध्यात्मिक जीवन और उसके प्रदर्शन के करीब पहुंचा रहा है। जब हम महसूस करते हैं कि जीवन आत्मा है तो कभी भी भावतिकता में नहीं, ये समझ ईश्वर में अच्छाई और किसी अनय चेतना की आवश्यकता को खोजने के द्वारा आत्मपूर्णता में विस्तारित हो जाएगी। आत्मा और उसके स्वरूप ही होने का एकमात्र यथार्थ है। आत्मा के माइक्रोस्कोप के तहत पदार्थ गायब हो जाता है। सत्य से पाप का नाश होता है और बीमारी और मृत्यु को यीशु ने दूर किया, जिसने उन्हें त्रुटि का रूप दिया। आध्यात्मिक जीवन और आशीर्वाद ही प्रमाण है जिसके द्वारा हम सच्चे अस्तित्व को पहचान सकते हैं और उस अकाथनी शांति को महसूस कर सकते हैं जो आध्यात्मिक प्रेम को अवशोषित करने से आती है। किसी भी तरह से आत्मा के पदार्थ को त्यागने का ये वैज्ञानिक अर्थ है। मनुष्य को देवता में अवशोषण और उसकी पहचान के नुकसान का सुझाव देता है, लेकिन ये व्यक्ति की व्यापकता, विचार और काम को व्यापक क्षेत्र, एक अधिक विस्तृत प्रेम, एक उच्च और अधिक स्थायी शांति पर निर्भर करता है। चौकस, शांत और सतर्क रहें। जिस मार्ग से ये समझ पैदा होती है कि ईश्वर ही एकमात्र जीवन है, वो सीधा और संकीर्ण है। ये मास के साथ एक युद्ध है जिसमें हमें पाप, बीमारी और मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, खा अभी या इसके बाद। निश्चित रूप से इससे पहले कि हम आत्मा के लक्ष्य तक पहुंच सकें या परमेश्वर में जीवन पा सकें। जब रोग के पहले लक्षण दिखाई देते हैं तो दिव्य विज्ञान के साथ सामग्री इंद्रियों की गवाही का विवाद करें। न्याय की अपनी उच्च भावना को, नश्वर राय की झूठी प्रक्रिया को नष्ट करने दें, जिसे आप कानून का नाम देते हैं, और फिर आप एक बीमारी तक ही सीमित नहीं होंगे और ना ही अंतम भुगतान में पीड़ित होने की स्थिति में, जो कि अंतम दंड है जो त्रुटि की मांग करता है। नश्वर मन राजा कुशी, सामग्री और आत्मा के वर्चस्व के खिलाफ उकसाने की दलीलों को उखाड़ फेंकने के लिए आप सत्य की आत्मा की चेतना में उठते हैं। मानसिक रूप से शरीर से हर शिकायत का खंडन करते हैं और जीवन की सच्ची चेतना को प्रेम के रूप में जन्म देते हैं, जैसा कि सभी शुद्ध हैं और आत्मा के फल को प्रभावित करते हैं। इस ईश्वर प्रादित अधिकार का प्रयोग करें, अपने शरीर पर अधिकार करें और उसकी भावना और क्रिया पर शासन करें। आत्मा के समर्थ में विरुद्ध का विरोध करना अच्छा है। ईश्वर ने मनुष्य को इसके लिए साक्षम बनाया है और वो इसके अलावा कुछ भी कर सकता है और मनुष्य को दिव्य रूप से दी जाने वाली शक्ति को नष्ट कर सकता है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।